एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी के आज के अंक में आप सबका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा है, वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर।
हाँ, वीआर।
और इसके लिए हम सहारा लेंगे सैमुअल ग्रीनगार्ड की किताब वर्चुअल रियलिटी का। ये MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है।
बिल्कुल। और वीआर सुनते ही दिमाग में शायद गेम्स या फिर वो साइंस फिक्शन वाली फिल्में आती हैं, है ना?
हाँ, ज्यादातर तो वही आता है।
लेकिन ये किताब बताती है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असर में हमारे कंप्यूटर और डिजिटल जानकारी के साथ जुड़ने का तरीका बदल रहा है।
हाँ, और ये सिर्फ कोई तकनीकी बदलाव नहीं है, मतलब इसका असर आप देखिए मेडिसिन, शिक्षा, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है।
अच्छा, आज हम ग्रीन गार्ड की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे कि ये वीआर आखिर है क्या चीज, कैसे काम करता है और हमारे लिए क्यों मायने रखता है।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेखक की बात करें, सैमुअल ग्रीनगार्ड।
हाँ, करते हैं। दिलचस्प बात ये है, जैसा आपने कहा, कि वो कोई वीआर डेवलपर या कंप्यूटर वैज्ञानिक नहीं है।
सही कहा, वो एक अनुभवी पत्रकार और लेखक हैं। मतलब दशकों से टेक्नोलॉजी, बिजनेस और समाज, इनके जो आपसी रिश्ते हैं उन पर लिखते आ रहे हैं।
और उनकी खासियत ये है कि वो मुश्किल तकनीकी बातों को भी आम लोगों के लिए काफी आसान और दिलचस्प बना देती हैं।
हाँ, एक तरह की विश्लेषक या सूत्रधार कह सकते हैं उन्हें।
बिल्कुल। वो अलग अलग जानकारियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं।
उनका नजरिया एक बाहरी व्यक्ति का है, लेकिन बहुत जानकार। मतलब एक पर्यवेक्षक जो इतिहास, आज की टेक्नोलॉजी और भविष्य के सामाजिक प्रभावों के बीच का कनेक्शन देख पाता है।
हाँ, वो मार्केटिंग के शोर शराबे और वो जो भारी भरकम शब्द होते ना, उनसे परे जाकर वीआर का जो मूल आइडिया है, उसकी असली क्षमता, उसको सामने लाते हैं।
और शायद यही बात इस किताब को खास बनाती है, मुझे लगता है।
हाँ बिल्कुल। ये किसी कंपनी का प्रचार नहीं लगता, एक संतुलित नजरिया मिलता है। तकनीक के साथ साथ उसका इस्तेमाल और समाज पर क्या असर होगा, ये समझने में मदद मिलती है।
तो ये सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी नई दुनिया की जो संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं, उनकी पड़ताल है।
अच्छा, तो ये किताब असल में है क्या, अगर सीधे शब्दों में कहें तो?
देखिए, ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया का एक जरूरी परिचय है, एक गाइड की तरह समझ लीजिए।
ओके।
इसका मकसद है हमें वीआर की पूरी समझ देना, ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे काम करता है और भविष्य में किधर जा रहा है।
और ग्रीन गार्ड का मुख्य तर्क क्या है इसमें?
ये इंसान और कंप्यूटर के बीच जो संवाद होता है ना, उसका अगला बड़ा कदम है, एक तरह का क्रांतिकारी बदलाव।
मतलब हम सिर्फ स्क्रीन पर जानकारी देखने के बजाय,
हाँ, उस जानकारी के अंदर कदम रख रहे हैं।
ये फर्क है।
अंदर कदम रख रहे हैं।
वाह।
और इस अनुभव का जो दिल है वो है प्रेजेंस।
प्रेजेंस।
ये वो मनोवैज्ञानिक यकीन है कि आप वाकई उस वर्चुअल दुनिया में मौजूद हैं। आपका शरीर भले ही कहीं और हो, ग्रीन गार्ड कहते हैं कि यही वीआर का असली जादू है, इसकी सबसे बड़ी ताकत।
दिमाग को ये यकीन दिलाना कि जो दिख रहा है वो सचमुच हो रहा है।
एग्जैक्टली।
अच्छा, तो किताब हमें कहाँ ले जाती है, मतलब इतिहास से शुरू करती है?
हाँ बिल्कुल। पुराने स्टीरियोस्कोप से लेकर 1960s के दशक के जो शुरुआती प्रयोग हुए, वहां से शुरू करके आज की तकनीक तक लाती है, जैसे हेडसेट, सेंसर, हैप्टिक्स।
हैप्टिक्स जो छूने का एहसास कराते हैं।
हाँ वही। और फिर गेमिंग से आगे बढ़कर इसके जो असली दुनिया में इस्तेमाल है उन पर जोर देती हैं, जैसे सर्जरी की ट्रेनिंग हो गई, या इमारतों के वर्चुअल टूर, या फिर PTSD जैसे मानसिक तनाव के इलाज में।
हाँ, और भविष्य की चुनौतियों पर भी बात करती है।
बिल्कुल। संभावनाएं, चुनौतियां, मेटावर्स क्या बला है, उससे जुड़े नैतिक सवाल क्या है, तो एक तरह से वीआर की पूरी कहानी है, अतीत, वर्तमान और भविष्य।
चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब के जो शुरुआती हिस्से हैं उनमें ग्रीन गार्ड कुछ बुनियादी बातें साफ करते हैं, जैसे वीआर आखिर है क्या।
हाँ, वो इसे एक कंप्यूटर जनित सिमुलेशन कहते हैं, एक ऐसा सिमुलेशन जो हमें पूरी तरह एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल 3D वातावरण में डुबो देता है, हमारी जो असली दुनिया की इंद्रियां है ना, उनकी जगह ले लेता है।
और यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं, जैसा आपने पहले भी कहा था, एक तो है इमर्जन।
हाँ, इमर्जन। ये सिस्टम की तकनीकी काबिलियत है, मतलब वो कितना भरोसेमंद, चारों तरफ से घेरने वाला अनुभव दे सकता है, दिखने में, सुनने में, शायद छूने में भी।
और दूसरा जो शायद ज्यादा जरूरी है, वो है प्रेजेंस।
हाँ, प्रेजेंस ये तकनीकी नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक चीज है। वो एहसास कि आप सचमुच उस वर्चुअल जगह पर है, आपका दिमाग उसे एक असली जगह मान लेता है। ग्रीनगार्ड बार बार कहते हैं कि यही प्रेजेंस वीआर का असली लक्ष्य है। यही वो चीज है जो उसे टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन से बिल्कुल अलग बनाती है।
अच्छा, इसी में वो रियलिटी वर्चुअलिटी कंटिन्यूम की बात भी करते हैं।
हाँ बिल्कुल, मतलब पूरी तरह असली दुनिया और पूरी तरह वर्चुअल दुनिया के बीच भी कई स्तर हैं, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी
एआर, जहाँ डिजिटल जानकारी असली दुनिया पर दिखती है,
जैसे वो पोकेमोन गो गेम था।
हाँ वैसा ही कुछ।
और फिर मिक्स्ड रियलिटी है, जहाँ वर्चुअल चीजें असली दुनिया की चीजों से इंटरैक्ट कर सकती हैं। ये सब समझना जरूरी है ताकि हम वीआर को सही संदर्भ में देख सकें।
सही है। अच्छा, तो ये वीआर की चीज आई कहाँ से? क्या ये अचानक, मतलब पिछले कुछ सालों में ही बनी है?
नहीं नहीं, किताब यही बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो दशकों पुरानी इंसानी ख्वाहिश है, यू नो, नकली दुनिया बनाने और उसे अनुभव करने की चाहत।
अच्छा, मतलब कितनी पुरानी?
इसकी जड़ें तो 19वीं सेंचुरी के पैनोरामिक पेंटिंग्स और स्टीरियोस्कोप तक जाती हैं, वो जो 3D का शुरुआती भ्रम पैदा करते थे।
अरे वाह।
फिर 1962 में मॉर्टन हेलिक का सेंजोरामा आया, एक बड़ी सी मशीन थी जिसमें बैठकर आप छोटी फिल्में देख सकते थे। 3D विजुअल, स्टीरियो साउंड, कंपन, यहाँ तक कि गंध भी।
गंध भी? कमाल है।
हाँ, लेकिन असली मोड़ आया 1968 में इवान सदरलैंड के स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज के साथ।
स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज, नाम तो बड़ा भारी है।
हाँ, और चीज भी भारी थी। ये पहला कंप्यूटर से जुड़ा हेड माउंटेड डिस्प्ले था, बहुत भारी था, छत से लटका रहता था।
ओह।
लेकिन इसने कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली, सिर के हरकत को ट्रैक करने वाली वर्चुअल दुनिया की नींव रखी।
और फिर 1980 के दशक में जेरोन लिनियर।
हाँ, जेरोन लिनियर, उन्होंने वर्चुअल रियलिटी शब्द घड़ा और अपनी कंपनी VPL रिसर्च के जरिए पहले कमर्शियल VR ग्लव्स और हेडसेट बनाए। लेकिन तब तकनीक बहुत महंगी थी और उतनी अच्छी भी नहीं थी।
अच्छा, इसीलिए फिर वो VR विंटर आया 90s के दशक में।
बिल्कुल, उम्मीदें बहुत थी पर तकनीक खरी नहीं उतरी, तो लोगों का उत्साह, पैसा, सब कम हो गया। तो ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि आज का जो VR है वो कई दशकों की धीमी लगातार मेहनत और कई असफलताओं के बाद यहाँ तक पहुंचा है। ये कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं है।
सही कहा। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज ये जादू होता कैसे है? मतलब हेडसेट के अंदर क्या चल रहा होता है?
हाँ, ये भी किताब आसान भाषा में समझाती है। हेड माउंटेड डिस्प्ले HMD का जो मूल सिद्धांत है वो स्टीरियोस्कोपी है।
स्टीरियोस्कोपी?
हाँ, मतलब दोनों आंखों को थोड़ा अलग एंगल से बनी तस्वीरें दिखाना। इससे दिमाग 3D का भ्रम पैदा करता है।
अच्छा,
इसमें फिर फील्ड ऑफ व्यू, आप कितना चौड़ा देख सकते हैं, रिफ्रेश रेट, तस्वीरें कितनी तेजी से बदलती हैं, और रेजोल्यूशन, तस्वीर कितनी साफ है, ये सब चीजें अनुभव को बेहतर बनाती हैं।
और सिर्फ देखना काफी नहीं है, इस सिस्टम को ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ देख रहे हैं, किधर चल रहे हैं।
बिल्कुल, यहीं पर ट्रैकिंग काम आती है। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम DOF का कॉन्सेप्ट है।
3DOF और 6DOF?
हाँ, 3DOF सिर्फ आपके सिर घुमाने, रोटेशन को ट्रैक करता है, जैसे आप कुर्सी पर बैठे बैठे देख रहे हों। लेकिन 6DOF आपके सिर घुमाने के साथ साथ आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चलने, ट्रांसलेशन को भी ट्रैक करता है।
तो इससे आप वर्चुअल स्पेस में चल फिर सकते हैं?
हाँ, और यही अनुभव को कहीं ज्यादा वास्तविक बनाता है।
ट्रैकिंग के तरीके भी अलग अलग हैं, आउटसाइड इन, इनसाइड आउट।
से आउटसाइड इन में कमरे में लगे बाहरी सेंसर आपकी पोजीशन पता करते हैं, इनसाइड आउट में हेडसेट पर लगे कैमरे ही बाहर की दुनिया को देखकर आपकी पोजीशन का अंदाजा लगाते हैं। आजकल ज्यादातर नए हेडसेट इनसाइड आउट ट्रैकिंग ही इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा आसान है।
और फिर आते हैं इनपुट डिवाइस, कंट्रोलर्स, और अब तो हैंड ट्रैकिंग भी है।
हाँ, हैंड ट्रैकिंग, जहां आपके हाथ ही कंट्रोलर बन जाते हैं, और हैप्टिक्स यानी स्पर्श का एहसास,
वो कंपन वाला।
हाँ, कंट्रोलर के हल्के कंपन से शुरू होकर पूरे शरीर पर पहने जाने वाले सूट तक जा सकता है, जो दबाव, तापमान या बनावट का एहसास करा सके। सोचिए वर्चुअल दुनिया में बारिश महसूस करना।
अरे वाह, ये तो कमाल होगा।
बिल्कुल, और इन सब हार्डवेयर के पीछे है सॉफ्टवेयर इंजन, जैसे यूनिटी और अनरियल इंजन। ये डेवलपर्स को ये वर्चुअल दुनिया बनाने और चलाने में मदद करते हैं। तो ये सब मिलकर वो प्रेजेंस का एहसास पैदा करने की कोशिश करते हैं।
ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब असल दुनिया में काम कहाँ आ रहा है? क्या ये सिर्फ गेमिंग के लिए है? ग्रीन गार्ड क्या कहते हैं?
ग्रीन गार्ड कहते हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका सबसे गहरा असर शायद पेशेवर और वैज्ञानिक दुनिया में हो रहा है।
अच्छा।
हाँ, ये किताब का एक बहुत ही प्रभावशाली हिस्सा है। हेल्थ केयर को ही ले लीजिए, सर्जन मुश्किल ऑपरेशन की प्रैक्टिस वीआर में कर रहे हैं
बिना किसी असली मरीज को खतरे में डाले।
बिल्कुल, ऑसो वीआर जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी के लिए बने हैं। मेडिकल छात्र 3D में शरीर रचना एनाटॉमी देख और समझ सकते हैं। किताबों या 2D तस्वीरों से ये कहीं ज्यादा प्रभावी है।
और मानसिक स्वास्थ्य में भी, आपने PTSD का जिक्र किया था।
हाँ, PTSD या अलग अलग तरह के डर, मतलब फोबिया, उनके इलाज के लिए एक्सपोजर थेरेपी में वीआर का उपयोग हो रहा है। ब्रेव माइंड जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, मरीजों को सुरक्षित और नियंत्रित वर्चुअल माहौल में उन स्थितियों का सामना कराया जाता है जिनसे उन्हें डर लगता है,
ताकि वो धीरे धीरे उन पर काबू पा सके।
हाँ, ये वाकई कमाल है।
और सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, डिजाइन और इंजीनियरिंग में भी।
बिल्कुल, बड़ी कंपनियां जैसे फोर्ड और बोइंग, वो गाड़ियों और हवाई जहाजों के वर्चुअल प्रोटोटाइप बनाकर उन्हें टेस्ट कर रही हैं। आर्किटेक्ट क्लाइंट्स को इमारत बनने से पहले ही उसके अंदर घुमा सकते हैं।
शिक्षा और ट्रेनिंग में भी, मैंने सुना था वॉलमार्ट अपने कर्मचारियों को ब्लैक फ्राइडे की भीड़ के लिए वीआर में तैयार करता है।
हाँ, ये सच है। और छात्र वर्चुअल फील्ड ट्रिप पर जा सकते हैं, बिना स्कूल छोड़े पिरामिड देख सकते हैं या मंगल ग्रह की सैर कर सकते हैं। दूर बैठी टीमें वर्चुअल मीटिंग रूम में एक साथ काम कर सकती हैं। तो ये सब उदाहरण बताते हैं कि वीआर अब सिर्फ खिलौना नहीं रहा, एक गंभीर और उपयोगी औजार बन चुका है।
हाँ, ये तो साफ है, लेकिन हर शक्तिशाली तकनीक की तरह इसके साथ भी चुनौतियां और सवाल जुड़े होंगे।
बिल्कुल, किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर बात करता है, भविष्य की संभावनाएं और खतरे। तकनीकी तौर पर अभी भी कई बाधाएं हैं।
जैसे कि?
जैसे एकदम असली दिखने वाले ग्राफिक्स बनाना अभी भी मुश्किल और महंगा है। लंबे समय तक हेडसेट पहनने से आंखों पर तनाव होता है, वो वर्जन्स एकोमोडेशन कॉन्फ्लिक्ट वाली समस्या।
हाँ, जिसमें आंखें कंफ्यूज हो जाती है।
सही, वर्चुअल दुनिया में आसानी से चलना फिरना अभी भी एक चुनौती है, वो ट्रेडमिल प्रॉब्लम। और हाँ, हेडसेट को और हल्का, सस्ता, आरामदायक बनाना भी जरूरी है।
और तकनीकी चुनौतियों से परे सामाजिक और नैतिक सवाल भी तो होंगे।
बहुत बड़े सवाल हैं। मेटावर्स की जो बात हो रही है, एक लगातार चलने वाला आपस में जुड़ा वर्चुअल स्पेस, सुनने में तो रोमांचक लगता है, पर इसके साथ प्राइवेसी के गंभीर मुद्दे जुड़े हैं। सोचिए अगर कंपनियां हमारी आंखों की हर हरकत, हमारे हर हाव भाव को ट्रैक कर रही हैं,
तो उस डेटा का क्या होगा? किसके पास जाएगा? कैसे इस्तेमाल होगा?
एग्जैक्टली। और क्या लोगों को इसकी लत लग सकती है? क्या वो असली दुनिया से कट सकते हैं? वर्चुअल दुनिया में हमारी पहचान क्या होगी? वहां होने वाले उत्पीड़न या बुरे बर्ताव को कैसे रोका जाएगा?
ये बहुत जरूरी सवाल है।
हाँ, ग्रीन गार्ड इन सवालों को उठाते हैं और कहते हैं कि हमें इनके बारे में अभी से सोचना होगा, ताकि हम इस तकनीक को सही दिशा दे सकें।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें या संदेश उभर कर आते हैं ना? मेरे लिए पहली बड़ी बात यह है कि वीआर सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, ये कंप्यूटर के साथ हमारे रिश्ते को बदल रहा है। हम जानकारी के साथ इंटरैक्ट करने के बजाय जानकारी के अंदर जा रहे हैं। ये एक बुनियादी शिफ्ट है।
हाँ, और दूसरी अहम बात, जैसा हमने बार बार कहा, वो है प्रेजेंस का जादू। वहां होने का एहसास ही वीआर की असली ताकत है। यही चीज इसे ट्रेनिंग, थेरेपी और यहाँ तक कि सहानुभूति जगाने के लिए इतना शक्तिशाली बनाती है,
क्योंकि हमारा दिमाग वर्चुअल अनुभव को सच मान लेता है।
हाँ, और उसका असर भी असली होता है।
तीसरी बात जो मुझे दिलचस्प लगी, वो है इसका लंबा इतिहास। वीआर कोई अचानक आई चीज नहीं, बल्कि दशकों की मेहनत का नतीजा है। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीकी बदलाव अक्सर धीरे धीरे ही आते हैं।
चौथा संदेश है, मनोरंजन से आगे देखो। गेमिंग ने वीआर को लोगों तक पहुंचाया, ठीक है, लेकिन इसका असली पोटेंशियल शायद गंभीर कामों में है, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, शिक्षा, ट्रेनिंग।
हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी जरूरत है, वीआर सुरक्षित और असरदार ट्रेनिंग देने में बहुत मददगार हो सकता है।
बिल्कुल। पांचवी बात थोड़ी चेतावनी जैसी है, इमर्जन की दो धारी तलवार। जो चीज वीआर को इतना शक्तिशाली बनाती है, यानी उसमें खो जाने की क्षमता, वही इसके खतरे भी पैदा करती है, लत, मनोवैज्ञानिक असर, डेटा का गलत इस्तेमाल, समाज से कट जाना।
हमें इन जोखिमों के प्रति सचेत रहना होगा।
हाँ, और आखिरी बात, वीआर अकेले नहीं बढ़ रहा, इसका भविष्य दूसरी तकनीकों से जुड़ा है, जैसे AI, 5G, एडवांस्ड हैप्टिक्स, यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस, ये सब मिलकर VR के अगले दौर को आकार देंगे।
किताब में कुछ विचार ऐसे हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, सीधे कोट्स तो नहीं, पर ग्रीनगार्ड के कुछ मुख्य तर्क या सूत्रवाक्य जैसे हैं।
हाँ, जैसे एक मुख्य विचार ये है कि वर्चुअल रियलिटी असली दुनिया से भागने का जरिया नहीं है, बल्कि उसे समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के नए तरीके खोजने का जरिया है।
बिल्कुल,
ये एक बेहतरीन सिम्युलेटर है जो हमें सर्जरी करने, उन इमारतों में घूमने जो अभी बनी भी नहीं, या दूसरों के नजरिए को महसूस करने का मौका देता है।
इसका मतलब साफ है, VR सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि असली दुनिया की समस्याओं को हल करने और सीखने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
बिल्कुल। दूसरा अहम विचार प्रेजेंस पर केंद्रित है। VR की सारी खोज असल में प्रेजेंस पाने की कोशिश है, दिमाग का वो गहरा खेल जहां वो डिजिटल भ्रम को एक असली जगह मान लेता है।
हाँ।
बाकी सब कुछ, स्क्रीन की क्वालिटी से लेकर हैप्टिक फीडबैक तक, इसी जादुई लक्ष्य को पाने के लिए।
हाँ, ये दिखाता है कि तकनीक का असली मकसद सिर्फ पिक्सल बढ़ाना नहीं, बल्कि दिमाग को यकीन दिलाना है। कितना गहरा है ये।
हाँ, और एक और विचार जो भविष्य की ओर इशारा करता है, हम अभी VR और मेटावर्स के डायल अप वाले दौर में हैं।
डायल अप वाला दौर, जैसे पुराना इंटरनेट?
हाँ।
अनुभव थोड़े अधूरे लग सकते हैं, हेडसेट भारी हो सकते हैं, लेकिन इसे आज की कमियों के आधार पर खारिज कर देना वैसी ही गलती होगी जैसे 1990 के दशक में शुरुआती इंटरनेट को देखकर की गई थी।
ये हमें याद दिलाता है कि शुरुआती दौर में हर बड़ी तकनीक थोड़ी कच्ची लगती है,
लेकिन हमें उसकी संभावनाओं को देखना चाहिए, जैसे शुरुआती मोबाइल फोन थे या इंटरनेट।
बिल्कुल।
तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या काम में इन बातों का क्या करें। शायद सबसे पहली चीज है VR को सिर्फ एक गेमिंग डिवाइस ना मानकर एक प्लेटफॉर्म या टूल की तरह देखना शुरू करें।
हाँ, ये सही नजरिया है। जैसे अगर कोई बिजनेस में है तो वो सोच सकता है कि क्या VR ट्रेनिंग का खर्च कम कर सकता है या प्रोडक्ट डिजाइन को तेज कर सकता है।
आर्किटेक्ट या इंजीनियर वर्चुअल प्रोटोटाइप से गलतियां जल्दी पकड़ सकते हैं।
हाँ, दूर बैठी टीमें वर्चुअल स्पेस में ज्यादा असरदार ढंग से मिल सकती हैं, कोलैबोरेशन बेहतर हो सकता है।
शिक्षकों और छात्रों के लिए तो ये, जैसा आपने कहा, अनुभवात्मक सीखने का खजाना है।
बिल्कुल। इतिहास या विज्ञान को रटने के बजाय छात्रों से अनुभव कर सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग के लिए, जैसे वेल्डिंग या भारी मशीनरी चलाना सीखना, VR एक सुरक्षित माहौल देता है।
भारत में दूरदराज के इलाकों में क्वालिटी एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग पहुंचाने में ये बहुत काम आ सकता है।
हाँ, इसकी बहुत संभावना है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जैसा हमने देखा, ट्रेनिंग, थेरेपी, दर्द कम करने या फिजिकल रिहैबिलिटेशन को ज्यादा दिलचस्प बनाने में इस्तेमाल हो सकता है।
और व्यक्तिगत स्तर पर भी, वो सहानुभूति मशीन वाली बात?
हाँ, एम्पथी मशीन। कुछ VR अनुभव हमें दूसरों की जिंदगी का एहसास करा सकते हैं, जैसे किसी शरणार्थी का या किसी विकलांग व्यक्ति का। ये हमारी सोच बदल सकता है। कलाकार और कहानीकार इसे एक नए मीडियम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां दर्शक सिर्फ दर्शक नहीं, कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, रचनात्मक रूप से, जिम्मेदारी से।
तो इस किताब और हमारी चर्चा से क्या सबसे महत्वपूर्ण सबक मिलता है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि VR सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये जानकारी के साथ हमारे रिश्ते को बुनियादी तौर पर बदल रहा है, और इसका असर धीरे धीरे हर जगह दिखेगा।
हाँ?
और वो प्रेजेंस का आइडिया कि टेक्निक हमारे दिमाग को कैसे बरगला सकती है, ये वाकई सोचने वाली बात है।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात थी VR का इतना लंबा इतिहास, और ये जानना कि प्रोफेशनल फील्ड्स में, खासकर मेडिसिन और इंजीनियरिंग में, ये कितना, मतलब, मैच्योर हो चुका है। ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं, ये आज का एक शक्तिशाली टूल है।
सही कहा।
और हाँ, किताब ये भी याद दिलाती है कि हमें इस तकनीक को सोच समझकर जिम्मेदारी से आगे बढ़ाना होगा। इसके फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और नुकसान कम से कम हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है।
बिल्कुल, एक नया माध्यम है जिसे हमें समझना और जिम्मेदारी से अपनाना होगा।
हाँ,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।